जय धवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंतारम्, नमो सिद्धारम्, नमो आयरियारम्, नमो वज्जायारम्, नमो लोए सौवसाहूनम्, अनुभाग भागमित्तो विजत्थ दोषस्य संभवो नत्ति, संपणनीय जिननाहम् संकमम अनुभाग गोयरम वोच्छम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुल तथा चुम्मी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार अपना चल रहा है, संक्रमण को देखते हुए अनुभाग संक्रमण का अपना प्रकरण चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 27। मूल प्रकृतियों के अनुभाग संक्रमण देखने के पश्चात अभी हम उत्तर प्रकृतियों में देख रहे हैं, तो यहाँ भी उत्तर प्रकृतियों की बात अपने शुरू हुई थी, तो उसमें हमने देखा था कौन कौन सी प्रकृतियों का अनुभाग कितना कितना होता है, किसकी घाती कहते किसको, किसको अघाती कहेंगे, किसको स्थान की अपेक्षा चतुस्थानिक त्रिस्थानिक द्विस्थानिक कहेंगे, ये बात हमने देखी थी। तो जो घाती कर्म है, यानी घाती कर्मों में जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, ये तो हमने देखे थे। और जो देशघाती है उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं, देशघाती भी। 21 पृष्ठ पर हमने सूत्र पढ़ा था नीचे का, सम्यक्त्व चार संयोजन और पुरुष वेद को छोड़कर अन्य जो कर्म है उनका संक्रम नियम से सर्वघातिक होता है तथा द्विस्थानिक त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक होता है। यहाँ संक्रमण की बात चल रही है, उदय किस रूप है उसकी बात नहीं चल रही है। तो जिनमें जिनमें सर्वघाती स्पर्धक होंगे तो उनका संक्रमण भी होगा ना, उसका यानी उसका आकर्षण आदि वहाँ चलेगा, तो उसकी अपेक्षा से वहाँ कहेंगे उसका सर्वघाती संक्रमण है। सर्वघाती में किस किस को लिया है, इनको छोड़कर ने मिथ्यात्व को लिया, सम्यक मिथ्यात्व को लिया है दर्शन मोनि के, अन्य में चार संयोलन को छोड़कर 12 कषाय लिए और 9 कषाय में पुरुष वेद को छोड़कर 8 लिए है। पुरुष वेद को भी जो यहाँ लिखा है तो वो नवक बंध की अपेक्षा से
देशघाती
उसकी बात देशघाती की एक स्थानिक वहाँ बताया। चार संज्वलन में भी ऐसा ही समझना था, लोभ में तो जो क्षपणा होती है उस काल में उसका जघन्य हो जाता है, सम्यक तो है ही, वो देशघाती ही स्पर्धक होते हैं उसमें, तो ये उन्होंने बता दिया। यहाँ तो बताते हैं कि जब तक क्षपक या उक्षम श्रेणी नहीं चढ़ता है ये, तब तक उसके चार संयोजन और पुरुष वेद का अनुभाग संक्रम भी मिथ्यात्व के समान है, यानी सर्वघाती वाला है, द्विस्थानिक त्रिस्थानिक चतुस्थानिक। एक ख्याल में केवल श्रेणी में वो नहीं
रहती,
तो श्रेणी में कहेंगे वो सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। सम्यक्त्व का तो हमेशा देशघाती ही होगा, वो कितने स्थानिक होता है, लता वाला होगा तो एक स्थानिक कहेंगे,
द्विस्थानिक पड़ेगा,
वो दारू अनंत वाला भाग कहेंगे उसको द्विस्थानिक, तो दोनों होते हैं उसमें, तो ये बात हमने देखी थी। अभी हम आते हैं पृष्ठ संख्या 27 पर, अभी स्वामित्व का प्रकरण शुरू हो रहा है। इस समय स्वामित्व का ऊपर कहेंगे स्वामित्तम, स्वामित्व का प्रकरण है, वो भी दिख रहा है, नहीं करना स्वामित्व। इस समय स्वामित्व का कथन करते हैं, इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वचन है। मैंने अभी कौन सा अधिकार शुरू हो रहा है उसके लिए ये कहते स्वामित्व का प्रकरण है। शंका, सर्वसंक्रम और नो सर्वसंक्रम आदि का सूत्र में निर्देश किस लिए नहीं किया? मैंने पहले अन्य जो अनियोग द्वार है उसको छोड़कर यहाँ डायरेक्ट इसको क्यों लिया? समाधान, नहीं, क्योंकि वे सुगम है, व्याख्यान से ही उनका ज्ञान हो जाता है, इसलिए उनका सूत्र में निर्देश नहीं किया। जघन्य अनुभाग संक्रम और उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम को विषय करने वाला होने से वह स्वामित्व दो प्रकार का है। स्वामित्व में जघन्य का स्वामी और उत्कृष्ट का स्वामी कहेंगे। उनमें से उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम विषय स्वामित्व का सर्वप्रथम कथन करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण करने वाला जीव कौन है, इसको कहेंगे उत्कृष्ट का स्वामी। तो मिथ्यत्वस्य उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमो कस्य, मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम है। इन्हें प्रश्न समझ में आवे ऐसा है, उसका उत्तर तो अभी बता रहे हैं। उपकस्य अनुभागम बंधी दूण आवलीय परिभगस्य अन्नदरस्य, मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध कर प्रतिभग्न हुए, प्रतिभग्न ने उत्कृष्ट बंध से भी वो लौटा है पीछे, जिसे एक आवली काल हुआ है, ऐसा अन्यतर जीव मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का स्वामी है। हमने देखा था संक्रमण तो बंधावली के पश्चात शुरू होगा, जब विभक्ति देखते थे हम अनुभाग विभक्ति, तो बनते ही समय उसकी उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति हो जाती थी। यहाँ तो संक्रमण की अपेक्षा बात चल रही है, तो वहाँ तो आवली के पश्चात कहेंगे। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग को उत्कृष्ट संक्लेश से बांध कर जिसे प्रतिभग्न हुए एक आवली हो गया है, उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। शंका, प्रतिभग्न हुए एक आवली काल को छोड़कर बंद होने के प्रथम समय में ही उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि बंधावली को बिताए बिना कर्म में अपकर्षण आदि रूप संक्रमणों की योग्यता नहीं पाई जाती। परंतु मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला वह जीव, बंध करने वाला कौन है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि और सर्व संक्लिष्ट होता है, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेश बिना उत्कृष्ट बंध नहीं होगा, इसलिए सर्व संक्लिष्ट कहा। यदि ऐसा है तो अन्यत्र उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम कभी भी नहीं प्राप्त होता है, इस प्रकार ऐसी आशंका होने पर, क्या अन्यत्र ऐसा उत्कृष्ट संक्रम नहीं हो सकेगा?
होगा ना, चल
अभी जिसने उत्कृष्ट बंद किया है
एक आवली
और मरकर अन्य पर्याय में चला गया, क्योंकि आवली पश्चात ही उसका संक्रम होने वाला है, तो वहां भी उसका संक्रम पाया जाएगा। तो कहते ऐसी आशंका का निराकरण करने के लिए सूत्र में अन्यतर विशेषण दिया है, क्योंकि घात किए बिना उसके उत्कृष्ट बंध के साथ एकेंद्रियादि जीवों में उत्पन्न हुए जीव के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम के प्राप्त होने में कोई विरोध नहीं आता। हमने देखा उत्कृष्ट बंध होने के बाद आवली के पश्चात उत्कृष्ट संक्रमण शुरू होता है, अंतर्मुहूर्त में उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो जाता है। अब उसके काल के भीतर अगर कोई मरकर एकेंद्रियादि में उत्पन्न हो तो वहां भी वो पाया जाएगा। इतनी विशेषता है कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच और मनुष्यों में, क्योंकि वहां ऐसे उत्कृष्ट संक्लेश वाला जीव मरकर इतने अल्पकाल में वहां उत्पन्न नहीं हो सकेगा, तो उसमें ये पाया नहीं जाएगा। तथा जहाँ के जो देव मरकर नियम से मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, ऐसे अनंत आदि देव, ये जहाँ के मनुष्यों में नियम से उत्पन्न होते हैं, उसका अर्थ क्या है जोशी साहब? हाँ देखो, सहस्रार के ऊपर, सहस्रार तक दो ऑप्शन है, कोई तिरंच में जन्मते है, कोई मनुष्यों में, और ऊपर अनंत आदि से तो शुक्ल लेशा है, सभी मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, और वहाँ ऐसे भी उसकी स्थिति तो मिथ्या दृष्टि भी हो वहाँ का तो भी अंत कोड़ा कोड़ी से अधिक नहीं बनते स्थिति, और अनुभाग भी उस मात्रा में कम बन देगा वहाँ पर। तो कहते अनंत आदि देव में ओघ उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम नहीं प्राप्त होता, उनके लिए जो उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट कहेंगे हम, उसको आदेश उत्कृष्ट कहेंगे। यहाँ ओघ उत्कृष्ट कहा, यानी जो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट है वो वहाँ नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसका घात किए बिना इन जीवों में उत्पन्न होना असंभव है। जिसके उत्कृष्ट बंध है अनुभाग का, उसका घात होने के पश्चात ही यहाँ उत्पन्न होना बनेगा। इस वचन से सम्यक दृष्टि जीवों में भी मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का निषेध जान लेना चाहिए। जैसे ये अभी हमने देखे थे भोग भूमि है, अनंत आदि देव है, वहाँ कोई उत्कृष्ट संकलेश के साथ बंधा हुआ अनुभाग लेकर उत्पन्न नहीं होता है, वैसे ही ऐसे उत्कृष्ट अनुभाग के साथ सम्यक्त्व भी नहीं प्राप्त होगा, अनुभाग घटेगा तब जाके सम्यक्त्व में उत्पन्न होगा, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके जिसे प्रतिभग्न हुए एक आवली काल हुआ है, ऐसा जीव कांडक घात किए बिना सम्यक्त्व गुण को ग्रहण नहीं कर सकता। देखो ये अनुभाग कांडक की बात है, क्योंकि हमने पहले देखा था सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति किसकी है,
सत्तर कोड़ा कोड़ी में,
तो सत्तर कोड़ा कोड़ी का उत्कृष्ट बंध किया है
अंतर्मूर्त,
और अंतर्मूर्त के पश्चात वहाँ उत्पन्न होता है तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। तो वहाँ कांडक घात किए बिना वो गया था, केवल अंतर्मूर्त बीत गया तो अंतर्मूर्त प्रमाण उसमें से समय घट गए, निषेक घट गया। यहाँ क्या कहते हैं, कांडक घात किए बिना वहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी एक अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो ही जाता है। उत्कृष्ट बंद किया है अनुभाग का, वो मिथ्या दृष्टि रहा भले, फिर भी अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट अनुभाग हो जाता है उसका, एक अंतर्मूर्त में वो अनुत्कृष्ट होगा। इसलिए कहते हैं, हमने देखा था ना, अंतर्मूर्त के अलावा अंतर्मूर्त के बिना वो समय को भी नहीं प्राप्त कर सकता, उस अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट अनुभाग उसका कांडक होकर घटकर वो अनुत्कृष्ट हो जाता। शंका, यह विशेषता सूत्र में नहीं कही गई, इसलिए उसे कैसा जाना जा सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि व्याख्यान से, सूत्र से तथा सूत्रानुकूल युक्ति से, युक्ति यानी तर्क हम लगा सकते हैं उसमें, तो कैसे भी खोटा नहीं चलेगा, सूत्र के अनुकूल उसका अर्थ अगर हम लगाते हैं, इस विशेषता का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्वामित्व है, उसी प्रकार शेष कर्मों का भी उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई अंतर नहीं है। इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। यहाँ भी कहेंगे उत्कृष्ट संक्रेश से उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया है, और अवली के पश्चात उत्कृष्ट संक्रमण होता है। कहते एवं सर्व कम्माणम, इसी प्रकार सब कर्मों का उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि सब कर्मों की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर प्रतिभग्न हुए जिसे एक आवली काल हुआ है, ऐसे अन्यतर जीव में सब कर्मों का उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होने में कोई प्रतिषेध नहीं है। किंतु अभी इसमें कोई अपवाद है तो कहते, जो बंध प्रकृतियां नहीं है, ऐसी कौन सी प्रकृतियाँ जो बनती नहीं है?
सम्यक
और समय मिथ्यात्व। तो ऐसे सम्यक और समय मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियों में यह क्रम संभव नहीं है, इसलिए उनके उत्कृष्ट स्वामित्व का निर्देश करते हैं। तो इसका स्वामित्व कौन होगा? सम्यक समय मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी कौन होगा? वेद समित्व प्राप्त करने वाला। फिर उसका अनुत्कृष्ट कब होगा?
विसंयोजना
करेगा तब। सपना के अलावा अन्य कहीं पर भी उसका उत्कृष्ट ही रहता है, अनुत्कृष्ट भी नहीं रहता।
विसंयोजना भी नहीं होगा?
भी नहीं होगा।
अच्छा, विसंयोजना क्योंकि क्रिया में हमने देखा था, क्रिया में अनुभव कम,
इसके लिए नहीं, स्थिति कम होगी उसकी, अनुभव नहीं कम होगा। जिसके जिसके समय समय मिथ्यात्व की सत्ता है, एक्सेप्ट कौन सा? वो दर्शन मोहनी की सपना करने वाला। नहीं पड़ेगा, अभी देखते हैं। देखो, नवरी सम्मत सम्मा मिच्छता न मुक्कस अनुभाग संकमो कस्व। किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है? प्रश्न चिन्ह करना है यहाँ पर। यह सूत्र सुगम है। दंशन मोनिय खवयम खवयम मोत्तुन जस संतकम्मम अत्थी तस उपकस्सानुभव संकम। दर्शन मोनि के क्षपक को छोड़कर जिसके उक्त कर्मों का सत्व पाया जाता है, वह उनके उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का स्वामी है। एक्चुअली वह उसके अनुभाग विभक्ति का स्वामी है कहना चाहिए, क्योंकि उद्वेलना में अंतिम आवली में प्रवेश करने पर उसका संक्रमण रुक जाता है, अनुभाग संक्रमण ही नहीं होगा, सत्ता में होते हुए भी संक्रमण नहीं। परंतु उसकी चर्चा छोड़कर अन्यत्र कि जहाँ जहाँ इन कर्मों की सत्ता है और सपना नहीं हो रही है, उस काल में इनका अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है थ्रू आउट। देखो, क्योंकि दर्शन मुनि के क्षपक के सिवा अन्यत्र उक्त कर्मों का अनुभाग कांडक नहीं होता। यद्यपि यहाँ पर सूत्र में सामान्य से जिसके सत्कर्म है कहा है, तो भी प्रकरणवश संक्रम के योग्य जिसके सत्कर्म है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ संक्रम का प्रकरण चल रहा है। अन्यथा उद्वेलना के समय आवली के भीतर प्रविष्ट हुए सत्कर्म वाले के भी ग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी वहाँ भी अनुभाग तो नहीं घटा है उसका, परंतु वहाँ संक्रमण रुक जाता है ना, अपकर्षण आदि जो कुछ है, अनुभाग में भी संक्रमण रुक जाता है उसका। शंका, अपूर्व करण में प्रविष्ट हुए दर्शन मोनी के क्षपक के भी प्रथम अनुभाग कांडक की अनिर्लेपित अवस्था में, निर्लेपित और अनिर्लेपित क्या होता है? निर्लेपन यानी बंध से छूट जाना, उसको कहेंगे निर्लेपन। अनिर्लेपित यानी अभी वो कांडक नहीं हुआ है, वो तो चल रहा है,
पूरा नहीं हुआ है।
उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम संभव है। क्या कहते हैं? कांडक की पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, उसमें उतना का उतना अनुभाग का संक्रमण चल रहा है, स्पर्धक नष्ट कहाँ हुआ उसमें? इसलिए सूत्र में दर्शन मोनी के क्षपक को छोड़कर यह वचन कैसे बन सकता है? ख्याल में यह क्या कहने का समाधान? नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रथम अनुभाग कांडक का पतन करा देने पर यानी पहला अनुभाग कांडक
कंप्लीट,
उसका पतन हुआ अंतिम फाली, उसके बाद उसको अनुत्कृष्ट होगा। तो प्रथम अनुभाग कांडक का पतन करा देने पर जो दर्शन मुनि का क्षपक है, वही सूत्र में दर्शन मुनि के क्षपक रूप से विवक्षित है, अथवा दर्शन मुनि की क्षपना करने वाले को छोड़कर अन्य जिसके उक्त
कर्म
की म के ऊपर रफाल चाहिए, यानी अपनी भाषा में क्या कहना, जिसको दर्शन होने की क्षपणा हो रही है उसकी उनको छोड़ देना, बाकी जिनके जिनकी उनकी सत्ता है उनके नियम से उक्त कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है। परंतु दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीव के ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम से अनुविद्ध प्रथम अनुभाग कांडक का घात कर देने पर वहां अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम की उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान बन गए। मार्गणा में जहाँ जिसका जो अनुभाग कहेंगे उसको उत्कृष्ट कह देंगे। अब इसी का विशेषार्थ दोबारा देखते हैं। अनुविद्य ने उसके साथ जुड़ा हुआ उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम से अनुविद्य प्रथम अनुभाग कांडक का घात कर देने पर, यानी जब तक उसका घात नहीं होता है तब तक वो उत्कृष्ट संक्रमण है। विशेषा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है, इस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्र में केवल इतना ही कहा गया है कि दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीव के सिवा यानी उनको छोड़कर उनकी सत्ता वाले अन्य सब जीव उनके उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम के स्वामी हैं। इस पर से दो प्रश्न खड़े हुए। प्रथम तो यह कि जो दर्शन मोह की क्षपणा नहीं कर रहे हैं उनकी सत्ता वाले ऐसे सब जीव यदि उनके उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम के स्वामी माने जाते हैं तो उद्वेलना के समय जिनका सत्कर्म यानी सत्ता में पड़ा हुआ कर्म आवली के भीतर प्रविष्ट होता है, उनके आवली प्रविष्ट कर्म का भी उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम मानना पड़ेगा। उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति तो वहां पर भी है विभक्ति, परंतु वहां संक्रम रुक गया। टीका में इस प्रश्न को लक्ष्य रखकर जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है, यद्यपि सूत्र में दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले को छोड़कर जिसके सत्कर्म है ऐसा सामान्य वचन कहा गया है, पर उससे उद्वेलना के समय आवली प्रविष्ट सत्कर्म वाले जीवों को छोड़कर अन्य सत्कर्म वाले जीवों का ही ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर यह कहा जा सकता है यह अर्थ कैसे फलित किया गया है, सो उसका समाधान यह है कि आवली प्रविष्ट कर्म का संक्रम आदि नहीं होता ऐसा ध्रुव नियम है। इसलिए इस नियम के अनुसार यह अर्थ सूत्रा फलित हो जाता है। दूसरा प्रश्न यह है कि अपूर्व कर्म में प्रथम स्थिति कांडक घात के पूर्व उक्त कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम संभव है, ये कौन सा अपूर्व कर्म की बात चल रही है?
क्षपणा दर्शन मोह की।
हाँ, दर्शन मोह की क्षपणा में जो करण लब्धि उसकी बात है। ऐसी अवस्था में दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले को छोड़कर यह वचन देना उचित नहीं है। उसका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यदि इतने अपवाद को छोड़ दिया जाए तो दर्शन मोह का क्षपक जीव उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक नहीं होता, इसलिए सूत्र में अन्य सब अवस्थाओं को ध्यान में रखकर दर्शन मोह के क्षपक को छोड़कर यह वचन दिया है। शेष कथन सुगम है। बात ख्याल में आई है? जब दर्शन मुनि की सपना शुरू होती है तो वहाँ जो अपूर्वकरण होते हैं वहीं से अनुभाग कांडक इसके शुरू होते हैं, उसके पहले नहीं। उसके स्थिति के घात तो हमने देखे थे परंतु अनुभाग का नहीं होता।
उज्ज्वलना में कभी जो सम्यक तो मिथ्या तो रूप हो जाता है तभी उनका ये उत्कृष्ट से है सम्यक तो का उससे मिथ्यात्व का बढ़ जाएगा।
आपका प्रश्न ऐसा है ना, वो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व का बढ़ जाएगा, तो सम्यक्त्व का किस रूप है पहले ये
देश का थी देश
लता दारू है, और मिथ्यात्व में सर्वघाती ही है, वो मिथ्यात्व होता है उसका अर्थ है वो अनुभव सर्वघाती हो जाता है।
हाँ तो बढ़ जाएगा,
आपके प्रश्न में उसका उत्तर है, वो मिथ्यात्व रूप होता है, बढ़े बिना मिथ्यात्व कैसे हुआ? समझ में आती है ना बात, वो मिथ्यात्व हुआ कैसे हुआ? वो कुछ पर प्रकृति ऐसी तो नहीं, अनुभाग बढ़ने से उसको मिथ्यात्व कह रहे, वो है तो दर्शन मुनि की, तो उसका पहले देशघाती रूप अनुभाग था, वो सर्वघाती रूप होकर मिथ्यात्व वाला जो सर्वघाती है उतना हो गया, तब हम उसको मिथ्यात्व वाला कहेंगे। मिथ्या तो हुआ उसी का अर्थ उसका देशघाती छूट कर सर्वघाती, और वो मिथ्यात्व के योग्य सर्वघाती होगा, नहीं तो हम उसको सम्यक मिथ्यात्व भी कह सकते थे, अकेले सर्वघाती होता तो क्या नहीं? तो अभी तक हमने उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण के स्वामी देखे, अब जघन्य को देखेंगे। हाँ कौन से देशघाती चतुष्कानी होते नहीं अब देशघाती के बोल रहे हैं कि सर्वघाती के? देशघाती प्रकृति कह रहे हैं कि देशघाती प्रकृति में चतुष्स्थानी होता है कि नहीं, ऐसा आपका प्रश्न है? हाँ होता है,
होता है, वहाँ पे तो सर्वघाती,
सर्वघाती का उत्कृष्ट और देशघाती का उत्कृष्ट, इसमें कुछ अंतर है क्या? तो ये अनुभाग के जो हमने देखे थे ना, अनुभाग विभक्ति में अल्पभूतव देखो, उसकी बात ख्याल में आ जाएगी, उसमें उत्कृष्ट और जघन्य में स्वामित्व देखना, उत्कृष्ट में अल्पभूतव देखना पड़ेगा, उसमें तो अलग अलग प्रकृतियों के अनुभाग, मेरे ख्याल से 259 के आजू बाजू में कहीं मिलेगा। के भी पहले होना चाहिए, आदेश 250 से शुरू हुआ, उसके आगे वो पहले तो नहीं, सन्निकर्ष है, अंतर है, अल्पभूतव कहाँ शुरू हुआ? उत्कृष्ट अनुभाग का अल्पभूतव, पेज नंबर 257 है पांचवे भाग में, देखो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग बंद सबसे तीव्र है एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर अनंतानुबंधी लोभ का उत्कृष्ट अनुभाग बंद अनंत गुणाहीन है, हमने देखा ना लोभ माया क्रोध मान, प्रदेश का बंटवारा भी उसी पद्धति से और अनुभाग भी उसी क्रम से, माया का उत्कृष्ट अनुभाग बंद विशेषहीन है अनंतानुबंधी का, फिर क्रोध का, फिर मान का, उसके बाद संज्वलन लोभ माया क्रोध मान, उसके बाद प्रत्याख्यानावरण, वो सब जगह वो अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन, और अपने अपने में विशेषहीन विशेषहीन। अनंतानुबंधी का पहले लोभ लिया, फिर माया, फिर क्रोध लोमा क्रोमा, उसमें आपस में विशेषहीन। अब जब अनंतानुबंधी से संज्वलन की बात करेंगे तो अनंत गुणाहीन, उसके चार लेना विशेषहीन विशेषहीन, फिर उसके बाद प्रत्याख्यानावरण, वो अनंत गुणाहीन, उसके चार विशेषहीन, फिर उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण, वो अनंत गुणाहीन।
तुझे नपुंसक पे जा रखी।
हाँ देखो मान मान हुआ, अभी वो 18 नंबर पर नपुंसक वेद का उत्कृष्ट अनुभाग बंद अनंत गुणाहीन, उसके बाद अरति का उत्कृष्ट वो भी अनंत गुणाहीन, फिर शोक, फिर भय, फिर जुगुप्सा, स्त्रीवेद, वो सारे अनंत गुणाहीन वाले लिए, पुरुष वेद का उत्कृष्ट, रति का उत्कृष्ट और हास्य का उत्कृष्ट। हाँ वो तो उसके अलग से बताएंगे, यहाँ तो हमने 26 देखे ना, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है, क्योंकि हमने देखा था ना अन्य इसका उत्कृष्ट है वो तो देशघाती जैसे ने जघन्य की ओर वाला है वो, और उसके बाद सम्यक्त्व का उत्कृष्ट है, क्या है पढ़ते हैं फिर भी सभी बातें तो याद रखना मुश्किल है ना। यानी सबका उत्कृष्ट एक लेवल पर नहीं है। अभी अभी हमने शिविर किया था ना, वो प्रदेशों का बंटवारा इसी क्रम से देखा था। अभी एक तो जघन्य, आगे जघन्य स्वामित्व का कथन करते हैं। इससे आगे अर्थात उत्कृष्ट स्वामित्व के कथन के बाद जघन्य अनुभाग संक्रम के स्वामित्व को बतलाते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है, मिच्छत्तस्य जघन्य अनुभाग संकामो को होई। इसके स्वामित्व देख रहे हैं यहाँ पर, मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है, प्रश्न करना है। कहते हैं एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय संगी असंगी बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, इनमें से इनका स्वामी कौन है इत्यादि इत्यादि हुआ इत्यादि विशेष की अपेक्षा रखने वाला यह पृच्छा सूत्र है। यानी ये 14 जीव समास में इनका स्वामी कौन है ऐसा यहाँ प्रश्न पूछा है। कहते सोमस हद समुत्पत्ति कम्मेन अन्नदरो, सूक्ष्म एकेंद्रिय के हत समुत्पत्ति कर्म के साथ अवस्थित अन्यतर जीव मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। देखो यहाँ क्षपणा वाला जीव नहीं लिया है, यानी क्षपणा के काल में भी अनुभाग इतना नहीं घटता जितना हत समुत्पत्ति वाले को घटता है। यहाँ सूत्र में सूक्ष्म पद के ग्रहण करने से सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव का ग्रहण करना चाहिए। वहां तो सूक्ष्म एकेंद्रिय इतना ही बता दिया, परंतु वो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त ऐसा उसको समझना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग संक्रम की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। मिनिमम पॉसिबल इसमें ही होते सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त में, वो भी हत समुत्पत्ति वाले की शंका। सूक्ष्म निगोद पर्याप्त का ग्रहण क्यों नहीं करते, नहीं क्योंकि उनमें हत समुत्पत्तिक जघन्य अनुभाग इससे अनंत गुणा पाया जाता है। ये बार बार हत समुत्पत्तिक शब्द डाला है, बंध की अपेक्षा से नहीं डाला है। हमने बंध में देखा था सूक्ष्म पर्याप्त को बंध अधिक होगा, यानी जघन्य की ओर भी ज्यादा मिनिमम होगा उसका, परंतु यहाँ हत समुत्पत्तिक के द्वारा ये बात बता रहे हैं। सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवों में बहुत विशुद्धि की भी करना, बहुत विशुद्धि की आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपर्याप्त जीव में मंद विशुद्धि से भी बहुत अनुभाग का घात संभव है। द्वि हुए ना भी करना, आपके देखो दो जगह विशुद्धि हुआ है, विशुद्धि करना ऊपर की लाइन में भी और नीचे की लाइन में भी, कि सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवों में विशुद्धि बहुत होगी ऐसे समझना नहीं, क्योंकि अपर्याप्त जीव है मंद विशुद्धि से भी बहुत अनुभाग का घात करता है। क्या कहना चाहते हैं, पर्याप्त जीवों में विशुद्धि अधिक होती है अपर्याप्तों में, संक्लेश भी अधिक होता है विशुद्धि भी अधिक होती है, परंतु यहाँ कम विशुद्धि से भी अनुभाग का अपर्याप्त जीवों में वो अनुभाग का घात अधिक होता है। शंका, ऐसा कैसे होता है। समाधान, क्योंकि यह जाति विशेष ही उस प्रकार की है, इसलिए हत समुत्पत्ति कर्म के साथ उसके जघन्य स्वामित्व का विधान करना विरुद्ध नहीं है। फिर शंका, हत समुत्पत्ति कर्म किसे कहते हैं, उसका समाधान, घात होने पर जिसकी उत्पत्ति होती है उसे हत समुत्पत्ति कर्म कहेंगे। यहाँ अनुभाग की बात है तो अनुभाग का घात कहेंगे, जहाँ स्थिति की बात होगी वहाँ स्थिति का घात कहेंगे हम। जहाँ तक शक्य हो वहाँ तक घात को प्राप्त हुआ कर्म, यह इसका तात्पर्य है। यानी मैक्सिमम पॉसिबल घात जहाँ तक पॉसिबल है उस वहां तक उसका घात हुआ है, इसको कहेंगे हत समुत्पत्ति। सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि से, यानी उस जीव के लिए जो सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि है, पहले हमने सर्वसंक्लिष्ट शब्द देखा था, मिथ्या दृष्टि के सर्वसंक्लिष्ट कहा था, अब यहां सर्व विशुद्ध लिया। तो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि से घात को प्राप्त हुआ वह कर्म जघन्य अनुभाग सत्कर्म रूप होता है, जो उसके उत्कृष्ट अनुभाग बंध से अनंत गुणाहीन होता है, तथा उसी के जघन्य अनुभाग बंध से अनंत गुणा अधिक होता है। ओहो, बंध से अधिक है। हाँ, दोनों देखो, फिर से पढ़ेंगे इसको। ये जो घात से जो प्राप्त हुआ है, कौन सा? सर्व विशुद्ध, अधिक से अधिक विशुद्धि के द्वारा जो मैक्सिमम पॉसिबल घात होकर जो अनुभाग अभी यहाँ प्राप्त हुआ है वो कितना है? तो यहाँ का जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध है, बंध की बात है, उससे अनंत गुणाहीन तो है ही है, परंतु यहाँ जो जघन्य अनुभाग है उससे अनंत गुणा अधिक है, बंध से अधिक है। मुझे लगा था ये बंध से भी कम है, ऐसा नहीं, बंध से अधिक है। अब तत्प्रायोग्य अजघन्य अनुत्कृष्ट बंध स्थान के समान होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यानी वो अनुत्कृष्ट है और अजघन्य है, उत्कृष्ट से अनंत गुणाहीन है और जो जघन्य बंध है उससे अनंत गुणा अधिक है, इन बिटवीन वाला है। घात के द्वारा प्राप्त हुआ अनुभाग कितना है? उत्कृष्ट से अनंत गुणाहीन है और जघन्य से अनंत गुणा अधिक है, बंध की अपेक्षा। सूक्ष्म अपर्याप्त की बात
करें, यहाँ पे हत समुत्पत्ति का जो अनुभाग है वो कम है, और जो वहाँ पे जो यथा योग्य एकेंद्रिय के योग्य जो बंद करता है वो उससे अनंत गुणा है।
उल्टा देखो, फिर से पढ़े। सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि से घात को प्राप्त हुआ वह कर्म जघन्य अनुभाग सत्कर्म रूप होता है, यानी सत्ता में उसका जघन्य अनुभाग सत्कर्म होता है।
तो यह समुत्पत्ति की बात है।
हाँ, उसके उत्कृष्ट अनुभाग बंध से अनंत गुणाहीन होता है, तथा उसी के जघन्य अनुभाग बंध से अनंत गुणा अधिक होता है।
समुत्पत्ति वाला ज्यादा है और जघन्य अनुभाग बंध जो
कम
करता है वो कम है।
तत्प्रायोग्य अजघन्य अनुत्कृष्ट बंध स्थान के समान होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार के सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हतसमुत्पत्ति कर्म से युक्त जो अन्यतर जीव है वह प्रकृति में जघन्य स्वामी होता है। क्यों कहा? क्योंकि उसमें संक्रमण कराना है ना। देखो, संक्रमण कराएगा यानी उसमें अपकर्षण होगा, तो अपकर्षण होने के लिए नीचे कुछ चाहिए ना उसके, इसलिए बात है। तो इसमें कुछ होगा तो नहीं, पता नहीं। अनुभाग विभक्ति में जघन्य का स्वामी, ये स्वामी में भी आए थे ना बात। एक सौ 161 आजू बाजू में कहीं होगा।
तो यहाँ पे जिसका संक्रमण हो रहा है वो जघन्य वाला ले दें कि जिसमें संक्रमण हो रहा है वो जघन्य ले दें?
जिसका हो रहा है। अभी किसकी बात हम देख रहे थे यहाँ पर?
मिथ्यात्वकी।
देखो 162 पृष्ठ पर है। ये भी उससे भी पहले से ये चर्चा है, उसको हम देखते हैं। मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म, अभी सत्कर्म की बात चल रही है, अभी संक्रमण की नहीं चल रही। तो कहते सूक्ष्म जीव के होता है। तो सूक्ष्म जीव में किसको लेना है? सूक्ष्म एकेंद्रिय वो निगोद को लेना है।
लब्ध्य पर्याप्त को लेना पड़ेगा,
सूक्ष्म एक ही नहीं लब्ध्य पर्याप्त। देखो नीचे का समाधान पढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर शंकाकार ने पूछा था सूत्र में एकेंद्रिय पद को क्यों नहीं ग्रहण करना, मात्र सूक्ष्म जीव क्यों कहा, उसके लिए कहा था कि एकेंद्रिय को छोड़कर अन्यत्र सूक्ष्म होते ही नहीं। ये सूक्ष्म और बादर भेद किसके हैं, मात्र एकेंद्रिय के, बाकी सभी जीव बादर ही होते हैं, इसलिए वहां नहीं कहा। तो कहते तो वो निगोद कहना चाहिए था, क्योंकि निगोद के सिवा अन्यत्र जगन्य अनुभाग सत्कर्म का अभाव है, तो उसके लिए कहते हैं सूक्ष्म पद के निर्देश से ही उनका ग्रहण हो जाता है, उसका खुलासा कहते हैं। यहाँ सूक्ष्म एकेंद्रिय कहने से स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान से और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो सूक्ष्मपने को प्राप्त है, अर्थात जो ज्ञान से भी सूक्ष्म है और पर्याय से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म एकेंद्रिय कहने तो पांचों आ गए, परंतु यहाँ ज्ञान की भी सूक्ष्मता है, मिनिमम पॉसिबल ज्ञान ग्रहण करना है तो वो तो निगोद में होता है। सूक्ष्म निगोदिया को छोड़कर अन्यत्र दोनों प्रकार की सूक्ष्मता संभव नहीं है, यानी वहां तो शरीर के जो परमाणु है वो तो सूक्ष्म प्रकार के होंगे, उसको सूक्ष्म जीव तो कहेंगे, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वायु का एक वगैरह, परंतु ज्ञान की और उसके दोनों की सूक्ष्मता मात्र निगोद में होती है, वह अन्य जीव में नहीं पाई जाती। अतः सूक्ष्म का अर्थ सूक्ष्म निगोद या एकेंद्रीय जीव ऐसा होता है। कहते फिर अपर्याप्त पद क्यों कहते हैं, यानी उसका पद वहां कहना चाहिए था, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त कहना चाहिए था, तो कहते वो है ऐसा उसकी सिद्धि हो जाती है
सूक्ष्म पद के निर्देश से।
हाँ, क्योंकि हमने उसमें भी देखा था, स्थिति बंध में भी देखा था, पहला ऊपर का सूक्ष्म जीवों में उत्कृष्ट किसको होगा, सूक्ष्म पर्याप्त को होगा,
बादर सूक्ष्म पर्याप्त।
अभी सूक्ष्म में बादर सूक्ष्म कैसे,
नहीं नहीं सॉरी, सूक्ष्म पर्याप्त,
सूक्ष्म पर्याप्त का उत्कृष्ट, फिर सूक्ष्म
अपर्याप्त का,
अपर्याप्त का उत्कृष्ट, फिर जघन्य की ओर, पहले सूक्ष्म
अपर्याप्त
का जघन्य और उसके नीचे सूक्ष्म पर्याप्त का जघन्य। भूल गए क्या बासुपो वगैरह?
हाँ, वो तो बराबर, तो ये सूक्ष्म पर्याप्त का जगन्य होगा ना।
हाँ ठीक है ना, बंद
पर यहाँ पे हमने अपर्याप्त लिया है,
सुनो तो सही, इसीलिए तो पूछ रहे। तो शंका, यदि सर्व विशुद्ध सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव के जगन्य अनुभाग बंद होता है तो उसे जगन्य अनुभाग स्वीकार करते हो, तो अपर्याप्त जीव की विशुद्धि से पर्याप्त जीव की विशुद्धि अनंत गुणी होती है, इसीलिए तो उसका जगन्य बंध और नीचे की ओर होता है, हमने पहले देखा था ना, स्थिति बंध की अपेक्षा मैं बता रही हूँ, ये जिसकी विशुद्धि ज्यादा है उसका बंध कम हो सकता है। तो यह हमने सूक्ष्म पर्याप्त का उत्कृष्ट, फिर उत्कृष्ट में सूक्ष्म अपर्याप्त का उत्कृष्ट, अब जगन्य की ओर, पहले सूक्ष्म अपर्याप्त का जगन्य और फिर सूक्ष्म पर्याप्त का जगन्य, तो ये जगन्य भी ज्यादा है, उत्कृष्ट भी ज्यादा है सूक्ष्म पर्याप्तों में ही, तो पर्याप्तों में संकलेश भी ज्यादा हो सकता है, विशुद्धि भी अधिक से अधिक विशुद्धि भी हो सकती है। अगर सर्व विशुद्धि की बात करनी है तो सूक्ष्म पर्याप्त को कहना चाहिए था, ये उसका प्रश्न है, क्योंकि उसकी विशुद्धि अनंत गुणी होती है। अतः सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के जो जगन्य अनुभाग बंद होता है उसे क्यों नहीं स्वीकार किया, ये प्रश्न था। नहीं, क्योंकि घाते गए अनुभाग में बचे हुए शेष अनुभाग सत्कर्म का यहाँ ग्रहण किया गया है, यहाँ पर नवीन बंध की प्रधानता नहीं है, जब जगन्य अनुभाग सत्कर्म कह दिया है, घात के द्वारा जो शेष बचा उसको लिया है, बंध की बात यहाँ नहीं ली है। क्या कहना चाहते हैं, मान लेते उसका इतना पहले अनुभाग था, घात होते 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 से इतना बचा, ये घात के द्वारा इतना उसके अनुभाग रह गया है, इतने स्पर्धक रह गए, अभी उसने नया बंध इतना किया, क्योंकि सत्ता में तो ये है ना, कहना क्या चाहते, सत्ता में तो इतना पड़ा है, घात होने के बाद इतना रह गया है, और नया बंध उससे कम हुआ है, तो नया बंध कम है मगर सत्ता में तो अधिक वाला, वो घात वाला तो पड़ा है ना, इसलिए सत्ता की अपेक्षा मिनिमम किसको कहेंगे, जो घात के द्वारा प्राप्त हुए उसको। हाँ, उसकी कम बंद हो रहा है वहां पर, परंतु वहां तक वो कम सत्ता में जो पड़ा है, जो मैक्सिमम है, उसी को कहेंगे अनुभाग उसका। जैसे किसी ने स्थिति उसकी पड़ी है अंदर एक कोड़ा कोड़ी की, और उसने अंत कोड़ा कोड़ी का कोई भी बंद किया, फिर जब तक वो स्थिति है तब तक वही स्थिति कहलाएगी ना, सत्ता की स्थिति कौन सी कहलाएगी, जो मैक्सिमम पड़ी है। वो बंद कम भी हुआ है फिर भी वहां पर जो सत्ता में पड़ा है उसको हम कहेंगे, उसमें स्थिति सत्व उसको कहेंगे हम। ऐसे ही तो उसकी विशुद्धि के द्वारा यहाँ जो घात होता है, घात होकर जो बचता है, यानी इतना तो सत्ता में पड़ा ही है, इससे कम बंद हो सकता है, परंतु सत्ता वाला कर्म घटकर इतना नहीं हो सकता, ये बात बताना चाहिए। ख्याल में यही बात है, घटकर इतने तक पहुंच गया, अब नया बंध इससे कम हो रहा है, परंतु ये जो घटा हुआ इससे नीचे नहीं घट सकता, भले बंध कम हुआ।
पर हमने आगे देखा हस्तशब्दोत्पत्तिक वाले का कम होता है, और जो बंधक की अपेक्षा जो देखा वो
कहाँ देखा,
आगे के पुस्तक का अर्थ ही देखा ना,
अभी तो पढ़ा इसको।
ये शंका में पर समझ नहीं, क्योंकि घाते गए अनुपात के बचे हुए शेष अनुपात
बंद की बात है, बंद की बात है,
और जो हतसमुत्पत्ति वाला जो अनुभाग है वो उससे कम है,
ज्यादा है। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो फिर आप घोटाला कर रहे हैं, देखो देखो अभी हमने पुस्तक में जो पढ़ा था, फिर अपने पुस्तक में देखो, नौ नंबर पुस्तक में 31 पृष्ठ पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि से घात को प्राप्त हुआ वह कर्म जघन्य अनुभाग सत्कर्म रूप होता है। सत्कर्म की बात है, सत्ता में इससे कम बंधने, सत्ता में इससे कम अनुभाग नहीं हो सकता।
अच्छा।
सत्ता में अनुभाग सत्कर्म कहा है, उसके उत्कृष्ट अनुभाग बंध से, अभी यहाँ बंध को
दिया,
यह अनंत गुणाहीन होता है,
और जघन्य अनुभाग
उसी के जघन्य अनुभाग बंध से, यहाँ बंध लिया है, अनंत गुणा अधिक होता है, परंतु सत्ता में तो उतना हतसमुत्पत्तिक वाले से कम नहीं हो सकता, भले बंद जघन्य हो तो वो उसी में जाके मिलेगा। सत्ता वाला अनुभाग इससे हतसमुत्पत्तिक से नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां जो पड़े हैं अधिक अनुभाग वाले, भले ना बंद नया कम हुआ तो उसमें वो तो कहलाएगी, उसे सत्ता के कहलाएगी, परंतु उसके ऊपर वाले अनुभाग वाले पड़े हैं ना,
तो सूक्ष्म पर्याप्त में जो जगन्य बंद होगा वो सूक्ष्म अपर्याप्त से कम वाला बंद,
कम वाला होने दो, फिर भी सत्ता तो जितनी हतसमुत्पत्तिक है उससे नीचे नहीं जाएगी, और वो हतसमुत्पत्तिक में मिनिमम जो है वो अपर्याप्त जीव करेगा, पर्याप्त भी नहीं, ये बात बताना, यानी वो बंध के द्वारा मिनिमम हो जाए, उत्कृष्ट की ओर जाएंगे तो बंध के द्वारा उत्कृष्ट होता है, पर जघन्य बंध करने से सत्ता वाला अनुभाग जघन्य हो जाए ऐसी बात नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक सत्ता में पड़ा है अनुभाग वो जब तक नहीं घटेगा, अभी वहां कांडक घात के द्वारा ही घट सकता है, वहां तो अभी कांडक रूप गया, अभी वह तो समुत्पत्ति का अंतिम स्टेज है उसकी, उससे घट नहीं सकता है, जघन्य बंध भी हो जाए तो भी इतना तो अनुभाग बना ही रहेगा हत समुत्पत्ति को, तो वही उसके लिए मिनिमम है। देखो ये पांचवी पुस्तक में पूरा करते जो हमने पढ़ना शुरू किया था, देखो समाधान, घाते गए अनुभाग में बचे हुए शेष अनुभाग सत्कर्म का यहाँ ग्रहण किया है, यानी सत्ता में जितना अनुभाग शेष रहता है उसकी बात है, बंधने की बात है, नया जो बंध हो गया भले कम है परंतु सत्ता में जो अधिक उससे अधिक पड़ा है ना, वो कैसे कम हो सकता है, जघन्य बंद हुआ, फिर भी जो सत्ता में जो मिनिमम पॉसिबल जो है वो उससे अनंत गुना अधिक है, तो ये कम बंधेगा तो भी उसमें जाके मिलेगा, उससे अधिक यानी उससे कम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो हत समुत्पत्ति की जो मर्यादा है, लिमिट है घात होने की, वो तो पहुंच चुकी है। यहाँ पर नवीन बंध की प्रधानता नहीं है, क्योंकि बंध हुआ तो भी क्या हुआ, जब तक सत्ता में उससे अधिक बंध अधिक पड़ा है सत्कर्म अनुभाग, तो उसे क्यों हम सत्ता वाला अनुभाग कहेंगे। देखो शंका, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के जीव से चाहिए, सूक्ष्म एकेंद्रिय निगोध चाहिए। शंका क्या है, यदि सबो विशुद्ध सोम इंद्रिय अपजद से जहन अनुभाग बंद जहन अनुभाग उत्ती गेंदपदी, तो अपजद विषय ही तो पजत विषय अनंत गुणोत्ति सोम इंद्रिय अपजत से जहन अनुभाग बंदो किन्न गिपदी। क्या कहते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव के, ये पर्याप्त शब्द निकाल दें, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव की विशुद्धि से ठेरना है, अच्छा देखो यहाँ कौमा देना है, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के अपर्याप्त जीव की विशुद्धि से अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा, क्या कहना चाहते हैं हम, इसका जरा वाक्य बदल लेंगे अपनी भाषा में। हाँ शंका यहाँ कहते हैं कि सूक्ष्म एकेंद्रिय की अपर्याप्त जीव की विशुद्धि से सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव की विशुद्धि अनंत गुणी है, विशुद्धि ज्यादा है उसकी, और उसके द्वारा जो घात होगा वो ज्यादा घात होना चाहिए, उसकी यहाँ क्यों नहीं उसका ग्रहण किया, प्रश्न समझ में है। विशुद्धि किसकी ज्यादा है, ज्यादा है पर्याप्त की ज्यादा है, तो उसमें घात भी ज्यादा होना चाहिए था, जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ घात भी ज्यादा होना चाहिए था, उसका समाधान नहीं, क्योंकि जाति विशेष के कारण सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव के थोड़ी विशुद्धि के होने पर भी घात करने से जो अनुभाग शेष रहता है वह सूक्ष्म पर्याप्त के जघन्य अनुभाग को देखते हुए अनंत गुणाहीन है। जाति विशेष के कारण सूक्ष्म निगोध लब्धि अपर्याप्त के भले विशुद्धि कम है सूक्ष्म पर्याप्तों से, फिर भी वो ज्यादा घात करता है, घात होने के बाद जो वहाँ अनुभाग बचता है वो मिनिमम है, पर्याप्त जीव घात करके द्वारा जो अनुभाग प्राप्त करते हैं वो अनंत गुणा अधिक है और इससे कम है, इसलिए यहाँ सूक्ष्म पर्याप्त के अनुभाग का ग्रहण नहीं किया है।
नहीं यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं ना कि जघन्य अनुभाग संक्रमण बता रहे हैं, तो जघन्य में जघन्य अनुभाग संक्रमण जो पर्याप्त के होगा उससे अपर्याप्त का डिफरेंस कम है, तो वहाँ पे जघन्य संक्रमण हो रहा है इसे बता रहे हैं।
नहीं, अनुभाग विभक्ति की बात चल रही है,
यहाँ पे विभक्ति की बात है।
हाँ।
तो हम लोग जो अभी जो
जहाँ विभक्ति कम है वहीं पर संक्रमण जघन्य कहलाएगा।
हाँ। तो यहाँ पे विभक्ति ये सूक्ष्म पर्याप्त के कम है उससे सूक्ष्म पर्याप्त की
अनुभाग ज्यादा है उसका।
हाँ, तो वहाँ पे डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा।
कहाँ का डिफरेंस की बात ही नहीं यहाँ पर,
क्योंकि वहाँ पे विशुद्धि ज्यादा है तो वहाँ पे अनुभाग भी इतना कम हो जाएगा।
नहीं होता ना, वही तो बताते हैं।
नहीं, बंधक की अपेक्षा
बंध कम हुआ तो क्या हुआ, जब तक सत्ता में अनुभाग अधिक पड़ा है तो कम बंध से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो इतना अनुभाग सत्ता में पड़ा है,
यह हत समुत्पत्ति जीव के लिए जो संक्रमण जो
देखो
होता
अभी
है।
अब सुनो पहले।
हाँ।
ये ज्यादा था उसका एक इंद्री के योग्य।
हाँ।
ये हत समुत्पत्ति हुआ। कौन है ये पर्याप्त वाला हत समुत्पत्ति हुआ। अब ये जो अपर्याप्त जीव है उसके भी ज्यादा था।
हाँ।
उसका देखो इसका बंध कितना होता था, पर्याप्त का मिनिमम होता था।
हाँ।
इसका बंध ज्यादा होता था।
हाँ। बराबर, और इसका भी हत समुत्पत्ति का लेवल समान है।
अभी समझो ना।
हाँ।
अभी इसने हत समुत्पत्तिक के द्वारा इतना किया, परंतु ये सूक्ष्म जीवों ने हत समुत्पत्तिक के द्वारा इतना किया, ये उसके लेवल आ गए। हत समुत्पत्तिक के द्वारा इतना हुआ, इसका हत समुत्पत्तिक के द्वारा इतना है, इसका नया बंध ज्यादा है, इसका कम है, परंतु ये कम हो या ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें ये लिमिट सत्ता में पड़ी है, तो उससे कम हुआ तो क्या हुआ, उससे सत्ता वाला अनुभव तो कम होने वाला नहीं है। बंध इसका मिनिमम है, पर्याप्त का मिनिमम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, परंतु हत समुत्पत्ति द्वारा जो शेष बचा, इसका हत समुत्पत्ति और इसका हत समुत्पत्ति,
इसमें डिफरेंस है,
इसमें अपर्याप्त का हत समुत्पत्ति से शेष बचा कर्म कम है, यानी इसके अनुभाग विभक्ति मिनिमम है, तो इसका जब संक्रमण होगा
वो मिनिमम
तो उसको मिनिमम संक्रमण कहेंगे, जघन्य संक्रमण कहेंगे, क्योंकि इसके हत समुत्पत्ति द्वारा इतना, तो इससे अभी सत्ता वाला कम नहीं होने वाला,
तो इसका
कितने ही काल वो जघन्य बंद करता रहे फिर भी उसकी सत्ता में इतना ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा। देखो ये जाति विशेष के कारण वो अनुभाग सत्कर्म थोड़ा कर लेता है, फिर कहते इसी के मिनिमम है कहाँ से जाना है, तो देखो समाधान लास्ट में, सूत्र में मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म दर्शन मुख की क्षपणा में न बतला कर सूक्ष्म निगोदिया के बतलाया है, उससे जाना जाता है कि अपर्याप्त निगोदिया जीव अनुभाग घात के द्वारा थोड़ा अनुभाग कर लेता है, उसका अनुभाग घात ज्यादा हो जाता है। कौन सा? हाँ, ये एक एनजीओ में ऐसे कांडक घात होते हैं, हाँ, पर्याप्त अपर्याप्त में जो है नया बंध जहाँ मिनिमम है, अभी पंचेंद्रियों में तो मनुष्यों में तो क्षपणा में कर लेगा वो, एक एनजीओ में होते हैं, यानी वहाँ अपर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त की विशुद्धि ज्यादा, यानी विशुद्धि कम है,
कम है,
पर्याप्त उनकी विशुद्धि ज्यादा है,
ज्यादा है, तो वहाँ पे
वो बंध भी और कम करता
कम
है, फिर भी घात के द्वारा जो शेष बचता है
अपर्याप्त से ज्यादा,
अपर्याप्तों में
ज्यादा घात हो जाता है,
ज्यादा घात होकर कम कर्म बचता है, अनुभाग कम बचता है, इसलिए उसको लिया। अब जो यहाँ हत समुत्पत्ति करके द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय कहीं भी उत्पन्न होगा, तो उसका भी जब तक वो नया बंध करके और नहीं बढ़ाएगा तब तक वो इतना ही कहलाएगा विभक्ति की अपेक्षा, और संक्रमण की अपेक्षा कहेंगे तो आवली के बाद उसका संक्रमण होगा, तो यहाँ निगोद में से सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त से मरकर मनुष्यों में भी आ सकता है, पीरियंचों में सब जगह जा सकता है, देवनारकी में नहीं जाएगा परंतु अन्यत्र तो जाएगा ना, भूभूमि को भी नहीं जाएगा, तो उसके ये जघन्य पाए जाएगा। अभी आना अपने पुष्प 31 देखो फिर से पढ़ेंगे पैराग्राफ लास्ट वाला। सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि से, उसके लिए सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि घात को प्राप्त हुआ वह कर्म जघन्य अनुभाग सत्कर्म रूप हो, सत्ता में तो इतना ही मिनिमम हो सकता है, इससे कम नहीं, नया बंध इससे भी कम होगा जरूर, परंतु फिर भी सत्ता इससे कम नहीं हो सकता, जो उसके उत्कृष्ट अनुभाग बंध से अनंत गुणा हीन होता है तथा उसी के जघन्य अनुभाग बंध से अनंत गुणा अधिक होता है, तत्प्रायोग्य अजघन्य अनुत्कृष्ट बंध स्थान के समान होता है, तत्प्रायोग्य जो यथायोग्य होता है उसको समझ लेना, जो अनुत्कृष्ट भी और अजघन्य भी है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार के सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्ति कर्म से युक्त जो अन्यतर जीव है वह प्रकृति में जगन्य स्वामी होता है। यहाँ पर अन्यतर पद के ग्रहण करने से सब जीव समासों का ग्रहण अविरुद्ध है, ऐसा कथन करने के लिए आगे का सूत्र वचन है, क्योंकि उसने किया है तो समुत्पत्ति के केंद्रीय में, मरकर कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, अन्यत्र भी उसकी सत्ता पाई जाएगी। ए इंद्रियो वा वे इंद्रियो वा ते इंद्रियो वा चौर इंद्रियो वा पंचेंद्रियो वा एकेंद्रिय अथवा द्विंद्रिय अथवा तीनिय अथवा चतुरिंद्रिय अथवा पंचेंद्रिय जीव मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है, क्योंकि उसी अनुभाग के साथ सर्वत्र उत्पत्ति होने में कोई निषेध नहीं है। उसने जघन्य कर दिया है, अब वो जघन्य के साथ अन्यत्र कहीं भी उत्पन्न होगा तो उसके वहां पर भी पाया जाएगा। शंका। दर्शन मुनि के क्षपक के अंतिम अनुभाग कांडक के शेष रहने पर मिथ्यात्व का जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि हमने अन्यत्र देखा था ना, क्षपणा में सर्व जघन्य हो जाता है सब जगह, तो यहाँ वहाँ इसको क्यों नहीं दिया? समाधान। क्योंकि वहाँ का अनुभाग सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्ति के अनुभाग से अनंत गुणा होता है। यह कैसे जाना? समाधान, इसी स्वामित्व सूत्र से जाना। यही तो बताते हैं, नहीं तो बता देते क्षपणा में होता है करके। एवं अठन्नम कषायणम, इसी प्रकार आठ कषायों का जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। ये आठ कषाय कौन से हो गए? अप्रत्यक्ष, क्योंकि अनंतानुबंधी का जघन्य तो संयोजना होने पर कहेंगे और संज्वलन का जघन्य तो क्षपणा में कहेंगे। तो ये जो आठ कषाय है, मध्य आठ कषाय यानी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, तो कहते एवं अठन्नम कषाय, इसी प्रकार आठ कषायों का जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। इसी प्रकार यानी वो सूक्ष्म निगोद में उसको इसी प्रकार कहा। जिस प्रकार सूक्ष्म एकेंद्रिय के हत समुत्पत्ति कर्म के साथ स्थित अन्यतर जीव में मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामित्व दिया है, उसी प्रकार आठ कषायों का भी करना चाहिए, क्योंकि उससे इनके कथन में कोई विशेषता नहीं है। यानी वो जघन्य वहाँ हत समुत्पत्ति किया सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त में और मरकर अन्यत्र कहीं भी जन्म लिया उसने, तो जब तक उसका उससे उत्कृष्ट बंध नहीं होगा तब उसका उतना ही जघन्य स्वामित्व है और उसमें से जघन्य संक्रमण भी होगा। यदि कोई ऐसी आशंका करे विशुद्धतर करण रूप परिणामों के द्वारा, करण परिणाम कैसे है ये लब्ध पर्याप्त से भी विशुद्धतर है, अधिक विशुद्ध है, तो उसके द्वारा क्षपक की अंतिम फाली में घात होकर शेष बचे हुए अनुभाग का जघन्यपना बन जाता है, सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है। हमने क्या देखा था, हमेशा क्षपणा करते करते जो अंतिम बच जाता है वो तो अंतर मिनिमम होता है, क्योंकि अंतरकरण के पूर्व क्षपक संबंधी अनुभाग सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणा होता है। क्योंकि हम गुणस्थानों की अपेक्षा करेंगे या क्षपणा की क्रिया देखेंगे तो शुरू शुरू में अनुभाग और स्थिति भी ज़्यादा है, फिर वो घटती चली जाती, तो यहाँ तो एकेंद्रिय संबंधी जो अनुभाग है उससे भी यहाँ पर अंतरकरण के पहले अनंत गुणा पाया जाता है। और ये आठ कषायों की क्षपणा कब होती है? अंतरकरण के पहले होती है, इसलिए इसका जघन्य भी क्षपक की अपेक्षा जघन्य अनुभाग है, वो निगोदिया उसने जो जघन्य किया है उससे अनंत गुणा है, इसलिए ओग से जघन्य में जघन्य कहना है तो उसको ही ले लेना सूक्ष्म निगोद वाले। सम्मतस्य जघन्य अनुभाग संकामो को होई, अभी तो मिथ्यात्व की बात देखी, आठ कषायों की देखी, अब सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है? उत्कृष्ट का कौन देखा था हमने, याद है?
सम्यक्त्व का,
जिसके उसकी सत्ता है एक्सेप्ट क्षपणा वाला, क्षपणा में वो अनुत्कृष्ट हो जाता है, अनुत्कृष्ट की शुरुआत हुई, अब जघन्य कब होगा उसकी बात बताएंगे। यह सूत्र सुगम है। समया हियावलीय अक्षीण दंशन मोहिनी हूँ, जिसके दर्शन मुनि की क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल शेष है, वह सम्यक के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। क्योंकि आवली बचने पर वो संक्रमण रुक जाएगा, तो उसके एक समय पहले उसकी मिनिमम पॉसिबल वहाँ अनुभाग बाकी है। क्योंकि यहाँ पर अनुभाग का सबसे उत्कृष्ट घात प्राप्त हो गया, घात ज्यादा है तो शेष अनुभाग कम है, तथा प्रत्येक समय में होने वाली अपवर्तना से यह अत्यंत जघन्य कर लिया गया है, इसलिए इसका जघन्यपना बन जाता है। पहले अनुभाग कांडक होते गए, जब अनुभाग कांडक रुकते हैं तो प्रति समय अनुभाग घटता चला जाता है, अनंत गुणाहीन होता है, उसको कहेंगे अनुसमयापवर्तन। यहाँ कहिए प्रत्येक समय में होने वाली अपवर्तना, अपवर्तन यानी घटना, इसलिए इसका जघन्यपना बन जाता है। सम्मा मिच्छत तस्य जघन्य अनुभाग संकामो को हुई, सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम है। अंतिम अनुभाग कांडक का संक्रम करने वाला जीव सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। दर्शन मुनि की क्षपणा के समय द्विचरिमा आदि अधस्तन अनुभाग कांडकों का संक्रम करके, यानी अंतिम को छोड़कर उपांत और पहले वाले सभी कांडकों का संक्रम करके, जो सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम अनुभाग कांडक में व्यापृत है, यानी जिसका अंतिम अनुभाग कांडक चल रहा है, वह प्रकृति में जघन्य स्वामी होता है। तो कितने समय तक होगा?
अंतर्मूर्ति।
अन्यत्र जो हम देखें कांडक के बाद होता है, परंतु वो नहीं लेना यहाँ, क्योंकि अंतिम कांडक होने के बाद आवली प्रमाण शेष रहेंगे, तो वहां संक्रमण रुक गया, तो इसलिए अंतिम कांडक में थ्रू आउट उसका उतना ही अनुभाग है, अंतर्मूर्त वो जघन्य कहलाएगा। देखो स्थिति कांडक में क्या होता है, कांडक तो उतना का उतना रहता है, पर स्थिति एक एक समय से घट रही है। अनुभाग कांडक में तो ऐसा नहीं है,
समान अनुभाग रहता है,
उसमें तो जितना है पड़ा है सत्ता में उतना है ही है। कांडक घात के अंतिम समय में वो कम हो जाएगा, परंतु यहाँ तो अंतिम समय में वो रुक ही जाएगा। तो जब तक एक कांडक की एक फाली दो फाली तीन फाली चल रही, तो उतना का उतना कांडक बना रहता है, स्थिति जैसे उसमें कम नहीं होता हर समय, ख्याल में आती नहीं बात? इसलिए कहेंगे जब तक वो अंतिम अनुभाग कांडक में व्यापृत है, पूरा अनुभाग कांडक कर रहा है, तो थ्रू आउट उसका जघन्य स्वामित्व है। क्योंकि उससे पहले सम्यक मिथ्यात्व संबंधी जघन्य अनुभाग संक्रम नहीं उपलब्ध होता, ये तो सम्यक मिथ्यात्व की बात हो गई। कहते अनंतानुबंधिनम जघन्य अनुभाग संकामो को होई, अनंतानुबंधियों के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम है। विसंजो एदुण पुणो तप पाओग विशुद्ध परिणामेन संजो एदुण आवलियादिदो, आवलियादिदो ने आवली के अतीत होने पर, किसके संजो एदुण संयुक्त तो होने के आवली जीतने पर, और वो किस प्रकार से संयोग हुआ है, तो उसके प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम से। क्योंकि जो संयोजना होती है, संयोजना होने पर जो परिणाम है उसमें भी अधिकता होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ कहते उसमें तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम से संयोजित हुआ है, उसके आवली के पश्चात ये जघन्य संक्रमण होगा अनुभाग का। अभी हम इसका हिंदी पढ़ेंगे। विसंयोजना के बाद पुनः तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम से उनकी संयोजना करके, जिसे एक आवली काल हुआ है, वह अनंतानुबंधियों के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। कौन है स्वामी ख्याल में? अभी उस पर चर्चा समाधान और चलेगा। शंका, विसंयोजना के बाद इसे पुनः संयोजना में क्यों प्रवृत्त कराया है? अन्यत्र जैसे हम देखते हैं स्थिति में तो विसंयोजना के अंतिम कांडक की बात की थी उन्होंने, तो यहाँ तो संयोजना होने की बात क्यों उठाई? विसंयोजना में बता देते तो हमें जैसे क्षपणा में होता है वैसे वहां पर हो जाता। तो कहते हैं सब द्विस्थानिक अनुभाग सत्कर्म को गलाकर नवक बंध संबंधी अनुभाग में जघन्य स्वामित्व का विधान करने के लिए। क्या कहते हैं विषय योजना में क्या हुआ था? पहले सत्ता में जितना अनुभाग था वो सब गल गया, अन्य प्रकृति रूप हो गए, नहीं वो अनंत अनुबंधी का रहा नहीं। अब जब वो मिथ्यात्व में आया है तो नया बंध करेगा, तो मिथ्यात्व में आया है आते ही नया जो बंध करेगा वहां जघन्य अनुभाग बांधेगा, क्योंकि उसके अंतर्मुहूर्त तक तो परिणाम वो तो विशुद्ध की ओर ही रहते हैं। तो नवक समय संबंधी अनुभाग में जघन्य स्वामित्व का विधान करने के लिए विसंयोजना के बाद इसे पुनः संयोजना में प्रवृत्त कराया है। उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिपात स्थानों में से, ये प्रतिपात स्थान क्या होते हैं? गिरने के स्थान। तो जो विसंयोजना के बाद मिथ्यात्व में आया है वहाँ जीव के कितने अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं। तो उसमें से यह तत्प्रायोग्य जघन्य संकलेश संबंधी परिणाम से संयुक्त है। संकलेश ही लिया क्योंकि अभी गिर कर आया है तो संकलेश होगा, तो इसलिए तत्प्रायोग्य जघन्य ने जघन्य संकलेश लिया। वहाँ जो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग स्थान परिणामों के वेरिएशंस पाए जाएंगे उसमें से जो मिनिमम पॉसिबल संकलेश वाला है उसके ये जो नवक बंध वाला जो अनुभाग है वो मिनिमम बंधा जाएगा। इस बात का ज्ञान कराने के लिए तब पाओगे विशुद्ध परिणाम है ना, जघन्य संकलेश को और उसी को विशुद्ध को एक ही बात है, यह वचन कहा है। क्योंकि मंद संकलेश रूप परिणाम ही यहाँ पर विशुद्ध रूप से विवक्षित किया गया। अपेक्षा सहित हम बात कर सकते हैं इसको, तो संकलेश की मंदतम संकलेश है उसी को यहाँ विशुद्धि बताई, उसके प्रायोगिक विशुद्धि। अब उक्त प्रकार से संयुक्त होकर जब विभक्ति की बात करेंगे तो प्रथम समय में ही कहेंगे उसका जघन्य अनुभाग विभक्ति प्राप्त हुए, परंतु यहाँ संक्रमण की बात है तो अभी जो नया बंध हुआ है जघन्य अनुभाग वाला, एक आवली बीतने पर उसका जघन्य अनुभाग संक्रमण होगा। तो उक्त प्रकार से संयुक्त होकर जिसे एक आवली काल हुआ है वह प्रकृत में जघन्य स्वामी है, क्योंकि संयुक्त होने के प्रथम समय में जो नवक बंध होता है वो ध दिख रहा है क्या बराबर बंध, उसका एक आवली के बाद वहां पर जघन्य रूप से संक्रम देखा जाता है। इससे आगे जघन्य स्वामित्व का संबंध करना शक्य नहीं है, क्योंकि पहले समय में जघन्य था दूसरे समय में अनुभाग बढ़कर बंधेगा, तो जब दूसरे समय की आवली प्राप्त हो जाएगी बाद में तो उसका अधिक संक्रमण होगा, क्योंकि संयुक्त होने के द्वितीय आदि समयों में संकलेश की वृद्धि हो जाने से, यानी वो नियम से हो ही जाती है, अनुभाग बंद बढ़ जाता है, इसलिए उसमें संक्रम के योग्य जघन्यपना नहीं पाया जाता है। यानी संक्रम में जो जघन्य में जघन्य होगा वो तत्प्रायोग्य जघन्य यानी मंद संकलेश से बंधा हुआ जो जघन्य अनुभाग है
पहले समय में।
वो एक आवली के बाद जब उसका संक्रमण होता है तो वहां पर ही होगा, अन्यत्र नहीं। शंका, मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों के समान सूक्ष्म एकेंद्रिय के हतसमुत्पत्ति कर्म के साथ भी यहाँ पर जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं किया, अन्य कषाय में लिया इसका क्यों नहीं लिया वहां पर? समाधान, नहीं, क्योंकि घात करने से शेष बचा हुआ का प्राचीन अनुभाग सत्कर्म, इससे अनंत गुणा होता है। यानी यहाँ पर संयोजना के प्रथम में समय में बंधा हुआ अनुभाग
अनंत गुण
और वहाँ का सूक्ष्म एकेंद्रियों में जो घात के द्वारा प्राप्त हुआ अनुभाग है वो अनंत गुणा वाला है। इसलिए अनंतानुबंधी में संयोजना के पहले समय में जो जघन्य में जघन्य बंध हुआ है अनुभाग का, उसका जब संक्रमण होगा तब कहेंगे जघन्य संक्रमण। वो एकेंद्रियों के अनुभाग से भी अनंत गुणाहीन वाला है। फिर शंका, वह अनंत गुणा है किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, इसी सूत्र से जाना जाता है, क्योंकि सूत्र ही प्रमाण है ना, वही प्रूफ है। यदि ऐसा न होता तो वहीं पर स्वामित्व के विधान करने का प्रसंग आता। यानी वहां पर भी जैसे मिथ्यात्व के समान आठ कषाय बता दिए, वैसे इसको भी बता देते। इतने कथन से अनंतानुबंधियों के विषयोजना संबंधी अंतिम अनुभाग कांडक में जघन्य स्वामित्व के विधान विषयक आशंका का निराकरण हो जाता है। यानी जैसे क्षपणा में अंतिम कांडक में कहते तो वैसे वहां पर भी होता है, तो उसका भी निराकरण होता है, क्योंकि वहां का अनुभाग सूक्ष्म एकेंद्रिय के अनुभाग से भी अनंत गुणा देखा जाता है। अभी जो हमने देखा था संयोजना के पहले समय में बंधा हुआ वो जघन्य में जघन्य पॉसिबल, उससे सूक्ष्म एकेंद्रिय ने हत समुत्पत्ति द्वारा वो अनंत गुणा, और उससे भी विसंयोजना वाले अंतिम कांडक में वो अनंत गुणा। और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि सुहमाणु भाग मुवरी अंतरमकदे दुघादि कम्माणम, इस वचन से वह सिद्ध स्वरूप ही है। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि इस विषय से वचन से तो स्वामित्व विषयक अनुभाग का भी उसके अनुभाग से यानी सूक्ष्म एकेंद्रिय के अनुभाग से अधिक पना बन जाता है, सो ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन सत्कर्म का अभाव होने से प्रयत्न जनित जो नवक बंध होता है उसका उससे स्तोक रूप से संक्रम होना उचित है। क्योंकि वहाँ पर जो विसंयोजना आदि में जो पड़ा है ना, सत्ता में पड़ा हुआ प्राचीन कर्म है, इसका अनुभाग बहुत ज़्यादा पड़ा था और वो अधिक अनुभाग के साथ ही वहाँ नष्ट हो जाता है। अब यहाँ जो नया बंध है उसका अनुभाग कम बंधा है।
यहाँ पे ये प्रयत्न जनित की बताया,
प्रयत्न जनित यानी यहाँ पर जो कुछ परिणामवश, प्रयत्न जनित यानी परिणामवश, यहाँ जो मंद परिणाम है उसको प्रयत्न जनित कहेंगे। तथा संयुक्त होने के अंतर्मूर्त बाद भी सत्कर्म सूक्ष्म एकेंद्रिय के सत्कर्म से कम होता है, इस सूत्र वचन से भी वैसा होना उचित है। क्या कहते हैं, पहले समय में तो सत्कर्म तो कम है परंतु एक अंतर्मूर्त बाद भी वहाँ जो अनुभाग है वो सूक्ष्म एकेंद्रिय के अनुभाग से कम होता है, इस सूत्र वचन से भी वैसा होना उचित है। यद्यपि संयुक्त होने के प्रथम समय में ही शेष कषायों का प्राचीन सत्तारूप अनुभाग अनंतानुबंधियों के नवक बंध के ऊपर संक्रम करता हुआ रहता है, ऐसा निश्चित होता है, क्योंकि बंध में संक्रम होता है ऐसा नहीं। क्या कहना चाहते हैं, समझ में आती है बात? अभी किसी ने विसंयोजना की, वो मिथ्यात्व में गया तो उसने अनंतानुबंधी का बंध शुरू किया, उस अनंतानुबंधी का संक्रमण नहीं हो रहा है, परंतु क्या वो प्रतिग्रह रूप से है कि नहीं है? है ही, क्योंकि बंधने वाले प्रतिग्रह रूप से होते हैं। तो ये यहाँ पूछ रहे हैं, वहाँ नया बंध जघन्य बंध रहा है परंतु जो अन्य कषाय है विसंयोजना में अन्य कषाय रूप हुई थी अनंतानुबंधी,
वो अभी
संयोजना के पहले समय ही
अनंतानुबंधी,
वो अनंतानुबंधी से हो जाती है, तो उसका तो अनुभाग ज्यादा है। अब वो ज्यादा अनुभाग इसमें होगा कि नहीं संक्रमित, ये प्रश्न है। कल मैं थी बस कि पहले समय में संयोजना के अन्य जो कषाय है चारित्र मोहिनी है वो अनंतानुबंधी से टर्न हो रहे हैं, तो उसका अनुभाग इसमें संक्रमित हो जाए तो कहते हैं परंतु वह बंध के अनुसार ही परिणत हो जाता है। संक्रमण में क्या रूल क्या है,
जो नया बंध होता है उसी रूप होता है।
बंध जितने अनुभाग का हो रहा है, जो अन्य कषाय इस रूप हो रहे हैं तो उसका अनुभाग भी इतना ही हो रहा है, भले वो ज्यादा हो, उसमें अधिक अनुभाग था, परंतु जो नया बंधने वाली अनुभाग कम, अनंतानुबंधी का अनुभाग कम अनुभाग है,
तो संक्रमण भी कम।
तो जो कषाय अनंतानुबंधी रूप से हो रहे हैं उसका अनुभाग भी बंधने वाले अनुभाग के समान हो जाता है, ये बात यहाँ बताएं। इसलिए उसके जघन्य होने में कोई विरोध नहीं है। इसलिए यहाँ पर नया बंध भी जघन्य है और इसमें संक्रमित होने वाले कर्म भी इतने ही जघन्य होकर परिणत हो जाते हैं। इसलिए अन्य विवक्षा के परिहार द्वारा, यानी अन्य विवक्षा यहाँ नहीं हो सकती, उसके भी रूल आउट कर दिया, प्रकृत में ही जघन्य स्वामित्व बनता है, यह कथन निर्दोष है। ये बात ख्याल में आई, अभी तक हमने मिथ्यात्व का जघन्य किसके देखा, सूक्ष्म निर्लभ्य पर्याप्त के हत समुत्पत्ति के द्वारा, फिर आठ कषायों का भी वैसा ही,
उसके
बाद सम्यक्त्व का
एक समय प्लस एक आवली वाला,
सपना में, सपना में जब आवली प्लस एक समय बाकी रहता है तब की बात है, सम्यक मिथ्यात्व का
अंतिम कांडक का,
उसका भी सपना में जब अंतिम कांडक घट होता है तभी, हाँ अंतिम कांडक में, पूरा अंतिम कांडक अंतर्मूर्त तक, फिर कौन रह गया अभी, अनंत अनुबंधी
संयोजना के एक आवली प्लस एक समय,
हाँ संयोजना के समय जघन्य बंद हुआ
और एक आवली,
और एक आवली होने पर उसका जघन्य संक्रमण होता, उसी की चर्चा हमने की। अब कौन रह गए, अभी संज्वलन रहे हैं और पहले जो लीज
नौकरशाय
है पुरुषोत्तम समय, तो यहाँ क्रोध संज्वलन की बात पहले कहेंगे। कोह संज्वलन से जघन्य अनुभाग संकामो को होई, क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम है। चरिम अनुभाग बंधस्य चरिम समय अनिल लेवगो, अंतिम अनुभाग बंध का अंतिम समयवर्ती अनिर्लेपक जी, क्या कहते हैं, जो अंतिम अनुभाग बंध किया है, क्रोध वेदक काल का जो अंतिम समय है वहां पर उसने क्रोध संज्वलन का बंध किया, अन्य भी बंधे हैं परंतु हम इसकी बात कर रहे हैं, तो क्रोध संज्वलन का जो बंध किया है तो उसमें जैसे स्थिति जघन्य पड़ी है, कितनी पड़ती है,
दो समय कम दो
महीने
की,
दो महीने बंद की बात, बंद की बात, तो दो महीने का बंद हुआ है, वैसे यहाँ पर जघन्य अनुभाग का बंद भी हुआ है। तो कहते हैं कि अंतिम अनुभाग बंध का, केवल बंध करने से नहीं, उसका अंतिम समयवर्ती अनिर्लेपक जीव, ये बंद होने के आवली के पश्चात उसका घात शुरू होता है, यानी संक्रमण द्वारा नष्ट होने शुरू होते हैं, जब उसका अंतिम समय, यानी उसका अंतिम समय बाकी है, ये क्रोध के सत्ता वाले अंतिम समय उसका, तो वह जीव क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग नु करना उसे, जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है, कर दिया, हाँ। क्रोध वेदक शपक का जो अंतिम अनुभाग बंध है, जब उसने अंतिम बंध किया है उसमें स्थिति और अनुभाग दोनों ही बंधे थे, यहाँ प्रकरण अनुभाग का चल रहा है इसलिए स्थिति की चर्चा नहीं करेंगे, तो जो जघन्य अनुभाग बंध हुआ वहां पर उसकी यहाँ चरम अनुभाग बंध संज्ञा है, परंतु वह पृष्टि स्वरूप है, क्या कहना चाहते हैं, ये जो बंद हो रहा है वो इतना जघन्य बंद हो रहा है वहां पर वो कैसा है, तो पृष्टि स्वरूप है, पृष्टि स्वरूप है, उसका अर्थ क्या है, देखो जो होते पहले तो स्पर्धक थे उसमें वर्गणाएं थी, उसका अनुभाग बहुत घटाया तो अपूर्व स्पर्धक बने, उसके और अनुभाग घटे तो पृष्टि हो गई, तो यहाँ जो है पहले सत्ता में वाले तो पृष्टि रूप परिणाम आए, परंतु यहाँ जो बंध रहे हैं
वो भी
पुष्टि रूपी बंध हुआ, यानी इतना जघन्य बंध हुआ है इसका, क्योंकि क्रोध की तीसरी कृष्टि के वेदक जीव के द्वारा, ये तीसरी कृष्टि क्यों कहा, ये कृष्टि तो एक एक कृष्टि है परंतु अनेक कृष्टियों का मिलकर संग्रह कृष्टि कहते हैं,
तीन कृष्टि
और हर एक के तीन तीन संग्रह कृष्टियां होती है, क्रोध की तीन, वांछा की तीन, माया की तीन, लोभ की तीन। तो पहले प्रथम कृष्टि ऊपर से कहेंगे तो पहली कृष्टि का वेदक हो गया, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। तो तीसरी कृष्टि के वेदक जीव के द्वारा वह निवृत्त हुआ है, निवृत्त कृष्टि स्वरूप रचना हुई उसकी, उसको अंतिम अनुभाग बंध का अंतिम समयवर्ती अनिर्लेपक ऐसा कहने पर, ये कब होगा, तो क्रोध वेदक काल मिट गया है और फिर उसके एक आवली के पश्चात तो संक्रमण शुरू हुआ है और वो आवली का में एक समय कम तब पूरा हो जाएगा, इसलिए कहते हैं वह मान वेदक काल के दो समय कम दो आवली काल के अंतिम समय में विद्यमान जीव लेना चाहिए। दो समय कम दो आवली का अंतिम, क्योंकि वहाँ उसकी
लास्ट,
ये उसका अंतिम समय है क्रोध के क्षपणा का। हाँ, मान वेदक शुरू हुआ ना,
दो समय
क्योंकि क्रोध वेदक के अंतिम समय में उसको क्रोध का बंद हुआ है, वो तो बंद हुआ, बंद के समय से लेकर आवली काल तक उसका संक्रमण नहीं होगा, तो आवली पूरी हुई नहीं, उसमें एक समय तो इसका
कम हो गया,
बंद का एक समय उसी में ले लेना, तो वहाँ एक समय कम एक आवली है, फिर आगे के आवली में उसकी क्षपणा होती है, उसमें भी एक समय कम करना, तो दो समय कम दो आवली वहाँ पर जो स्थित है अभी, वो सप्ताह में क्रोध वहाँ पड़ा है, अभी नेक्स्ट समय वो नष्ट होने वाला
है,
तो अभी भी अनिर्लेपक, उसने उसकी एक खाली रह गई है, तो वो जीव लेना है। वह प्रकृत में जघन्य स्वामी है। यहाँ पर सूत्र में यद्यपि स्वोदय से स्वामित्व होता है ऐसा विशेषण लगाकर नहीं कहा है, तो भी स्वोदय से स्वामित्व को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शेष कषायों के उदय से चढ़े हुए क्षपक के क्रोध संगलन का अनुभाग स्पर्धक रूप से ही निर्लेपन को प्राप्त होता है। जरा इसका अर्थ देखेंगे, क्या कहते हैं, कल देखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए उसमें जघन्यपना नहीं बन सकता। यही रुकते अभी उसकी चर्चा करते हैं। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तकन हो सदा देखो।